टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा।
गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा।
अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे।
ओम शांति। किसी सेठ ने एक कबूतर खरीदा और उसको पिंजड़े में रखा। कबूतर दुखी था, पिंजड़े दुख के गीत गाता था, पर घर वालों को लगता था ये कितना मधुर संगीत रचता है, कितना मधुर गाता है। वो उसके दुख के आलाप थे, जब आसमान पर देखता था उसके साथ ही उड़ रहे हैं, दुख होता था। सोचता था क्या मैं करूं जो यहां से मुक्त हो जाऊं। एक दिन सेठ किसी सत्संग में जा रहे होते हैं और अचानक वो कबूतर बोल पड़ता है, सेठ का छोटा लड़का है, उससे कहता है तुम अपने पिताजी के साथ जा रहे हो तो जब उन महात्मा जी से मिलोगे तो ये पूछना मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। वो लड़का कहता है ठीक है, क्योंकि लड़के का वो दोस्त है कबूतर। तो सत्संग में जब हो जाते हैं, सत्संग पूरा होता है, वो जवान लड़का महात्मा जी के पास जाता है और पूछता है हमारे घर में एक कबूतर है, वो पूछ रहा है उसे मुक्ति चाहिए, कैसे मुक्त हो। वो महात्मा जी सुनते हैं और सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ते, समझ ही नहीं आता है किसी को ये क्या करती है। सभा पूरी होती है, सेठ जी और उसका बेटा घर आते हैं। वो कबूतर पूछता है बेटे से क्या हुआ, क्या तुमने मेरी अर्जी रखी, पूछा उनसे मेरा प्रश्न। वो बेटा कहता है, वो लड़का कहता है कि हाँ मैंने जैसे ही पूछा महात्मा जी से वे तो बेहोश हो गए, उत्तर दिया ही नहीं। पर कबूतर अंदर ही अंदर कहता है और सोचता है उत्तर मुझे मिल गया है। और दूसरे दिन जब सब उठते हैं तो देखते हैं कबूतर मरा पड़ा हुआ है पिंजरे के अंदर, और मरे हुए पक्षी को कौन रखेगा, निचेष्ट गिरा हुआ है। पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, और जैसे उसे बाहर निकाला जाता है वो उड़ जाता है। क्या सिखा दिया उस गुरु ने, अगर मुक्त होना है तो मर जाओ, मुक्ति की विधि क्या है, मर जाओ। जैसे ही उसने मरने का ढोंग किया, नाटक किया, दिखाया मैं मर चुका हूं, उड़ गया। बंधन का जीवन बड़ा दुखदायी जीवन है। लूटा लूटा उसने, किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। उड़ता हुआ वो आसमां से, गिरता हुआ वो आसमां से, गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंसते। दुख है पिंजड़े के जीवन में, बहुत दुख है। आसमान में उड़ने में जो आनंद है वो पिंजड़े में नहीं। मुक्त गगन में विचरण करने में जो आनंद है वो किसी भी तरह के पिंजड़े में नहीं। और बाबा चाहते हैं हम मुक्त हो जाएं। जीवन मुक्ति सतयुग में होगी, परंतु संगम युग की जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है। यहीं पर मुक्त हो जाए सभी तनाव से, सभी व्यर्थ से, सभी निगेटिव से, सभी विकारों से, सभी विकर्मों से, सभी पाप से। और जैसे ही चेतना मुक्त हो जाती है उड़ने लगती है, तो क्या करे जिससे आत्मा जो बंधन में है वो मुक्त हो जाए। कौन सी युक्ति, कौन सी विधि, कौन सा तिकड़म टेक्निक तकनीक की जाए जिससे हम किसी भी बंधन में ना फंसे। सुबह की अव्यक्त वाणी थी, इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें स्वीकार नहीं करनी। नेता अर्थात जो मन का नेता है, स्वतंत्र स्वराज्य अधिकार, शक्तिशाली, बंधन मुक्त, निर्बंधन, सब बंधनों को जो तोड़ दे और मुक्त हो जाए। और इस विश्वविद्यालय ने, बाबा ने ऐसी बहुत सी युक्तियां बताई जो हमें बंधन मुक्त करती है, सभी पिंजड़ों से मुक्त करती है। और उस युक्ति को कहा जाता है मर्यादा है। नियम ब्रह्मा कुमारी 4-in-1 है। पहला, ये एक संस्था है, और संस्था के कायदे कानून होते हैं। दूसरा, ये यज्ञ है, और यज्ञ विधि पूर्वक किया जाता है। जरा भी विधि में अगर गड़बड़ है तो यज्ञ सफल नहीं होगा। पूजा की विधि होती है, हर बात की विधि होती है यज्ञ में, तो ये भी ईश्वरीय यज्ञ है, ये अंतिम यज्ञ है। इसके बाद और कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। एक हफ्ता पहले साकार मुरली के वाक्य। तीसरा, ये यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या कॉलेज है, पाठशाला, इसमें सभी स्टूडेंट है, और हर विश्वविद्यालय का एक प्रोटोकॉल, एक नियमावली होती है, जिसके छात्रों को उनका अनुपालन करना ही पड़ता है। वैसे यहां पर भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, और चौथा है ये परिवार है। परिवार का मुखिया सरबरा स्वयं भगवान है। उसने अपने परिवार के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित की है, इस परिवार के लोग, इस समाज के लोग इस तरह से व्यवहार करें। तो ये एक संस्था भी है, ये एक यज्ञ भी है, ये एक विश्वविद्यालय है या पाठशाला है या स्कूल है, और चौथा ये परिवार है, 4 in 1। और चारों में नियम की आवश्यकता है, और चारों में जो नियम है वो हमें कहीं पर भी बंधन में आने से रोकते हैं, हम बंधक नहीं बनते। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऐसे 26 नियम हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, 26 मर्यादाएं। और ये सुनते सुनते ही यहीं बैठे बैठे संकल्प करते जाना है, जैसे जैसे सुनते जाएंगे कि ये बात मेरे जीवन में है नहीं पर होनी चाहिए और आज से वो होगी, संकल्प। जब कोई संकल्प कर लेता है तो चाहे कितनी भी मुश्किल बात है वो हो जाती है, केवल संकल्प की देरी है। सफलता एक सोच की दूरी पर है। तो कुल 26 नियम मर्यादा है। सबसे पहला अमृत वेला, कल भी चर्चा की थी, अगर रोज रोज अमृत वेला मिस होता है तो जीवन में खुशी नहीं रहेगी, दुख रहेगा, उदासी सी छा जाएगी। ये जो नियम आपको बता रहे हैं सब एक पेज पर नहीं लिखने, 26 पेज पर 26 नियम लिखेंगे। सबसे पहला पेज ऊपर लिखो ए बड़े अक्षरों में, नीचे लिखो ए फॉर अमृत वेला। क्लास में जो बातें सुनाई जाएगी वो एक दो पॉइंट्स नोट कर लो, बाकी छोड़ के रख दो, स्वयं उस पर चिंतन करके बाद में लिखने के लिए। तो पहला नियम है अमृत वेला, और अमृत वेला यदि शक्तिशाली बनाना है और अमृत वेले को अगर पावरफुल बनाना है तो उसकी विधि है जल्दी सो जाना। जल्दी उठना नियम नहीं है, जल्दी सो जाना अपना नियम बना लो, अपने आप अमृत वेला आग खुलेगी। अगर कोई 10:30, 11, 12 बजे सोता है तो कैसे उठ पाएंगे अमृत वेला। इतना विस्तार करके रखा है अपना बिजनेस का, धंधे का, कि जिसमें समय का कोई टाइम नहीं, कोई निश्चित समय नहीं है, कितना भी जा रहा है पर ये सब करके मुझे पा क्या रहा हूं मैं। अतीन्द्रिय सुख केवल अमृत वेले ही मिलता है, जहां आत्मा डिटैच हो जाए शरीर से और अनुभव करे अपने सच्चित आनंद स्वरूप को, मैं वो अद्वैत तत्व, अद्वैत तत्व, मैं वो आत्मा हूं। आत्मा उस प्रभु प्रेम में डूब जाए और संसार भूल जाए, वैराग्य लाने का सर्वोत्तम समय, चिंतन करने का सर्वोत्तम समय है अमृत वेला। अगर रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, उदासी छा जाएगी, फिर कुछ मजा नहीं आएगा, केवल मुरली सुनने जा रहे हैं बस, अमृत वेला तो मिस हो रहा है, भगवान से मिलन कैसे मना पाएंगे जब सारा संसार सोया पड़ा है, जहां संसार की सारी विकारी वाइब्रेशंस लुप्त हुए। उस समय सतोप्रधान समय है, उस समय उठकर प्रातः स्मरामि, भगवान से बातें करना, सूक्ष्म वतन का अनुभव करना, फरिश्तेपन का अनुभव करना, परमधाम का अनुभव करना, सृष्टि की परिक्रमा लगाना, सदर्शन चक्र घुमाना, आत्माओं को सकाश देना, आत्माओं में बल भरना, स्वयं का चिंतन करना, स्वयं के स्वरूप का चिंतन करना, कितने सारे काम हैं। प्लानिंग करना, तो अमृत वेला सर्वोपरि, जिनका बहुत मिस हो गया है, आज से ही संकल्प करेंगे। इस भट्टी का यदि कुछ सार है तो ये है, जल्दी उठना, अपने लौकिक घर में जहां रहते हैं वहां पर एक स्थान निश्चित करना है जहां हमें अमृत वेला करना है। मधुबन में ट्रांसलाइट मिलते हैं बाबा के, जो छोटा ट्रांसलाइट घर लगा दो, हो सके जगह है तो बाबा का कमरा बना के रखे, नहीं है तो भी चलेगा। जिनके पास बिल्कुल जगह नहीं है वो छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, पर उठना है। और जितना हमारा नियम पक्का होगा उतने हम शक्तिशाली होंगे। यदि कोई अमृत वेला मिस हो जाता है तो दुख होना चाहिए। एक भगत था, रोज 5 बजे उठता था और एक दिन उसकी आंख 6 बजे खुली, रोने लगा, रोने लगा, दिन भर रोने लगा, हे प्रभु ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मैं रोज 5 बजे उठकर तुझे याद करता हूँ, तेरी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, भजन गाता हूँ, और आज 6 बजे दिन भर रोता है। और दूसरे दिन सुबह 5 बजे आवाज आती है, उठो उठो, उसे खुशी होती है कि भगवान स्वयं मुझे उठाने आए हैं। देखता है कौन, वो कहता है मैं हूं शैतान माया। कहते तुम नॉट एक्सपेक्टेड, तुम कैसे आ गए, तुम उठाने आए। वो शैतान कहता है कल मैंने तुमको सुला दिया था 6 बजे तक, और तुम जो रोए इतना, अगर तुम्हारा ये रोना उस तक पहुंच जाता तो मेरी तो खैर नहीं थी, इसलिए मैं खुद ही आ गया हूं तुमको जगाने। जागना है, उठना है। राजाई अगर चाहिए तो रजई को छोड़ना पड़ेगा। ठंडी ठंडी हवा, आहा, खिड़कियां बंद, हीटर वीटर लगा हुआ, रजाई दिए हुए, और अलार्म बजता है 4:45 बजे, कब रजाई से हाथ निकलता है और कब उसको बंद करता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस, पता ही नहीं चलता है। अलार्म से उठना अच्छी बात है, नहीं उठ पाते थे, पर धीरे धीरे उसकी भी आवश्यकता ना पड़े। और कई ऐसे हैं जिन्होंने सारी कोशिशें कर ली सब, पर फिर भी फेल है, क्या किया जाए। एक कुमार था, रोज अलार्म भर के सोता था, पर हाथ निकलता था अलार्म बंद करता था। सोचा क्या करूं, दूसरा बेड था बाजू में बिस्तर, सोचा ये घड़ी जो है अलार्म की उस बेड के नीचे रख देता हूं ताकि सुबह बजेगी जोर से, फिर उठना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कहाँ है, फिर उठ के फिर वो बेड के नीचे घुसूंगा और फिर बंद करूंगा, तब तक तो नींद खुल जाएगी। दूसरे दिन 3:30 बजे जोर से अलार्म बजता है, पहले तो हाथ जाता है, देखता है ही नहीं, फिर उठता है, फिर याद आता है उसके नीचे रखी हुई है, फिर नीचे घुसता है उसके और उसको बंद करता है और फिर वहीं सो जाता है। फेल हो गया, फॉर्मूला फेल। कोई कोई दो दो अलार्म भर के रखते हैं, पर वो सब फेल होने के बाद एक विधि है, अपने किसी मित्र को बोलो कि मुझे कॉल करे, कॉल करते रहे जब तक मैं उठता नहीं, मदद लेनी है किसी की, वो कॉल करे फिर उठो। और उससे भी अच्छी विधि जो बताई, जल्दी सो जाओ 10 बजे के अंदर, अपने आप आंख खुलेगी। सोते ही लेट है और रात का समय है। डिजिटल नगरी भी तो एक्टिवेट हो जाती है उस समय। डिजिटल नगरी के अनचाहे रास्ते पुकारते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इस गली में उस गली में उस गली में उस गली में, ऐसी गलियों में घुस जाते हैं कि निकल ही नहीं पाते। निकलते निकलते 12 बज जाते हैं। दृढ़ संकल्प हो तो होगा। एक हाथ दो महीने पहले मुरलियों में स्लोगन आया था, परमात्मा प्रेम वो अलार्म है जो तुम्हें अमृत वेले जगाता है। हमें याद है एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे मधुबन, बहुत पहले बहुत पहले, सो गए 10 बजे और जब उठे तो देखा प्रकाश, जैसे 8 बज गए, सब गया, अमृत वेला गया, सब कुछ गया। देखा खिड़की के बाहर ट्रेन में लोग घूम रहे हैं, इतना भव्य प्रकाश, हम एकदम दुखी हो गए। ये क्या हो गया आज, ऐसे कैसे हो गया, उदास सी छा गई। ऐसा पहले तो नहीं हुआ, फिर भी चलो सोचा अभी करते हैं अमृत वेला, पर फिर भी दुखी हो गए, दुखी हो गए, बैठे अमृत वेला करने लगे। पर देखा ट्रेन तो रुकी हुई है और फिर ट्रेन चालू हुई, और जैसे ट्रेन चालू हुई देखा एकदम अंधेरा है बाहर तो, और फिर तुरंत घड़ी देखी उसमें 2 बज रहे थे। मिस नहीं हुआ। फिर खुशी हुई। अमृत वेला करने की व्यक्तिगत अपनी ही खुशी, जितने आत्मा शरीर से डिटैच हो जाए और प्रभु प्रेम में डूब जाए। जब सारा संसार सोया पड़ा है तब भगवान से मिलन बनाने में जो खुशी है उसको क्या कहें। इसके लिए जिनका रोज रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, जिनका बहुत साधारण हो रहा है, अमृत वेला करते करते नींद आती है, कोई इधर गिरता है कोई उधर, अमृत वेला बैठते हैं और नींद भयंकर, अभी बैठे और 5 मिनट के बाद घड़ी देखी तो 4 बजे बैठे, और थोड़े 1 मिनट के बाद ही देखा तो 5 बज चुके। इतना जल्दी कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चलता है। शांति स्तंभ मधुबन कितने लोग गए इसमें से, जो नहीं गए हाथ खड़ा करेंगे, अब तक मधुबन नहीं गए, बहुत सारे हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है, मधुबन पहुंचना है। भगवान पहले हम कहते थे आ रहा है, अब तो जा रहा है, गया, जल्दी पहुंचो। शांति स्तंभ पर एक भाई इतनी भयंकर नींद सेवाधारी कि पूरा जो उसको किसी ने उठाया, क्या कर रहे हो, वो कहता है सकाश, धरती को सकाश दे रहा हूं। भयंकर नींद, कुछ खबर नहीं, इतनी नींद की पूरा नीचे किरने दे रहा है धरती को, इतनी भयंकर नींद। नींद बहुत आती है तो शायद नींद पूरी नहीं हो रही है, शायद हो रही है पर फ्रेश नहीं हो रही है, शायद कोई बीमारी चल रही है शरीर की, शायद कुछ विटामिन्स की कमी है, ब्लड चेकअप कराओ, शायद दिन भर रेस्ट नहीं मिल रहा है, शायद कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई उमंग उत्साह ही नहीं है, और अमृत वेले का महत्व ही नहीं है। अगर नींद आती है तो उठो चलो फिरो और फिर अमृत वेला करो, छत पर जाओ, टेरेस पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, बालकनी में जाओ, फिर भी नींद आती है, क्लास सुनो, कुछ लिखो, मुरली पढ़ो, बाबा की वीडियो देखो, अव्यक्त बाप दादा की, पर सोना नहीं, बस ये पहला नहीं। 26 नियमों से नियम में पहली युक्ति अमृत वेला, और जो कल कहा था अमृत वेला किताब किस किस ने पढ़ी है, हाथ खड़ा करेंगे। अब जिन्होंने नहीं किए वो हाथ खड़ा कर पढ़िए। सबसे पहला काम तो ये करना है, अमृत वेले की जो किताब है वो पढ़नी है। उसकी सॉफ्ट कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी सहज, हार्ड कॉपी मधुबन से मंगानी पड़ेगी या सेंटर पर होगी। जब तक उस किताब का घोटेंगे नहीं, उसको पढ़ते रहना है ताकि उसका महत्व तो समझे, क्या महत्व है। रोज रोज अमृत वेला मिस करते रहेंगे तो एक दिन ब्राह्मण जीवन ही मिस कर देंगे। उठना है सुबह सुबह, उठ के भगवान से मिलन बनाना है। प्रभात सुमिर मन मेरे, अमृत वेले की क्या क्या महत्व है, जो जगह छोड़ी हुई है वो छोड़ दो, वो बाद में लिखना है। सेकंड पेज बी, ब्रह्मचर्य। 26 पेज में 26 मर्यादाएं लिखनी है, और जो पेज छोड़ा हुआ है उसमें अपनी प्लानिंग लिखना, महत्व लिखना, क्यों नहीं कर पा रहे वो लिखना, चिंतन लिखना, क्या कारण है मैं क्यों अमृत वेला नहीं कर पाता, क्यों सो जाता हूं, क्यों नींद आ जाती है मुझे, खुद का अन्वेषण करना है। कौन सी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग क्यों हो रहा है ऐसा, किसी से पूछना, किसी से राय लेना, क्या करें। हम लोगों की एक पूरी सीरीज है अमृत वेला पर, जो मधुबन के जो भाई बहने हैं सबने एक 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 लेक्चर दिया है, 10-12 क्लासेस है केवल अमृत वेला पर। यह भी एक अच्छा पुरुषार्थ है, अमृत वेले से संबंधित जितनी क्लासेस है वो सारी सुनना चाहूंगा, मिल जाएगी सर, टाइप करो अमृत वेला बीके क्लासेस आ जाएगा। उठो और एक दिन में वो क्लास सुनो, एक क्लास, उसके नोट्स निकालो, ताकि अमृत वेला पावरफुल हो। सेकंड पेज बी, और ब्रह्मचर्य। इस ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। जब तक ब्रह्मचर्य शक्तिशाली नहीं, अखंडित नहीं, फूटते रहेगा, शरीर खींचते रहेगा, शरीर का आकर्षण होते रहेगा, शरीर की इच्छा है, शरीर की तृष्णा है, शरीर के भोग, शरीर के विकार, सारे संसार में शरीर का ही प्रदर्शन है। सारा मीडिया, सारे उपन्यास, सारी फिल्में शरीर बीच में उसके इर्द गिर्द घूम रही है। क्या वास्तव में इतनी सुंदर दिखता है उसमें, है तो जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, वेयर इज द ब्यूटी, कहाँ है सौंदर्य। जाओ टीबी के पेशेंट को देखो, डायलिसिस और कैंसर के पेशेंट देखो, कहाँ गया सौंदर्य। अनाथ आश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, दांत गिर गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, वृद्धावस्था, उस वार्धक्य का चिंतन करो, कहाँ है। शमशान घाट बीच बीच में जाना चाहिए, किस लिए, चिताओं को जलते हुए देखने के लिए, आग की लपटे देखता है तो वैराग आएगा। महात्मा बुद्ध के पास कोई आता था संन्यास लेने तो उसको कहते थे जाओ पहले 3 दिन शमशान घाट में बिताओ, सुबह से लेकर रात तक केवल चिताओं को जलते हुए देखो, कैसे बचा सकोगे स्वयं को वैराग से। शमशान घाट वास्तव में सड़क शहर के बीच में होना चाहिए, शहर के बाहर रहता है, बीच में, इसलिए याद दिलाने के लिए कि ये जो तुम बच्चू भाग रहे हो ना, यही पहुंचना है, ये है अंतिम परिणति, अंतिम परिणाम ये है, ये जो आपाधापी, ये जो भाग दौड़ है किस लिए, यहां पहुंचने के लिए। कहां जाओगे बच के, भागते रहता है मनुष्य पागलों जैसे जीवन पर्यंत। अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, इससे क्या आसक्ति, इस शरीर से क्या आसक्ति, मिट्टी का पुतला है, भूत पूजा उस दिन मुरली में था। पागल है चेतना, शरीर के पीछे दीवानी, शरीर को देखना चाहती, शरीर को स्पर्श करना चाहती, मिलता क्या है, क्षणिक सुख जो तुरंत फ्रस्ट्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। देखना है तो शरीर की वास्तविकता को देखो, हड्डी हो, मांस का पुतला, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, क्या अतिरिक्त तो उसमें कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मा को देखना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। शरीर को देखते हुए और शरीर को भोगते हुए तो जन्म बीत गए, कुछ मिला, आत्मा रिक्त हो गई। अखंड ब्रह्मचर्य, इस यज्ञ की शुरुआत में कितनी माताओं ने कितना सहन किया, एक एक माता को कितना सताया गया, किस लिए, बस ये एक ही बात थी। ब्रह्मा बाबा के पास कितनी बार लोग आए और कहे कि आपकी संस्था से ये ब्रह्मचर्य हटा दो, देखना यहां भीड़ लग जाएगी। बाबा ने क्या कहा था, क्या नहीं चाहिए मुझे, भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, शेर और शेरनियां चाहिए जो दहाड़ लगाए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की लड़ी का तुम गुहार दो। भीगती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। किसका बघार देना है, छोक किससे लगाना है, आग से। आग चाहिए, आग, और वो आग है प्यूरिटी की आग, पवित्रता की आग। अगर पवित्रता नहीं तो वाणी में पावर भी नहीं। ब्रह्मचर्य ही ओज और तेज बनता है। प्यूरिटी सबसे बड़ी धारणा है, प्यूरिटी सबसे स्वधर्म है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही ऑनेस्टी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही लॉयल्टी है, प्यूरिटी ही सर्वस्व है इस संस्था में और सबके लिए है। वो विवाहित अविवाहित कुछ भी हो, पवित्रता अव्यक्त वाणी है बाबा की। 15 नवंबर 2003, डेट नोट करके रखनी, 15 नवंबर 2003। बहुत सारे सेंटरों पर ये चित्र लगाया हुआ है बाबा का, प्यूरिटी अर्थात जरा भी अपवित्र कर्म ना हो, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ हो गया। सफेद कागज पर काला दाग है ये, बाप धर्मराज के रूप में मिलेगा। ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही सोच लिया, जितने अत्याचार हुए, कितने कन्याओं पर अत्याचार हुए शुरुआत में, दादियों पर कितने अत्याचार हुए, पकड़ पकड़ के किसी किसी को सुअर का मांस खिलाया गया सिंध हैदराबाद में, क्यों, इसी के लिए। और यदि हमारा इस ब्राह्मण जीवन का ब्रह्मचर्य ही डोल रहा है तो क्या कहेंगे, अखंड ब्रह्मचर्य। उस दिन भी सुनाया था, शायद कुमारों की क्लास या कुमारियों की क्लास है, कन्या मर मर को पनघट पर पानी भर रही है, कुमार आता है, एक भाई आता है, कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कुमारी कहती है पानी मैं दूंगी, पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे, बस ये शर्त है, पानी तुम पीना। और वो मटके से उसको पानी देती है, वो घुटनों के बल खड़ा होता है और पानी पीता है और चला जाता है। समयांतर में उनके माँ बाप उन दोनों की शादी कर देते हैं बिना उन दोनों को बताए। शादी हो गई और दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों को ये नहीं पता कि मेरी शादी इससे हुई है। और जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं, वो कन्या वो दुल्हन उससे कहती है, अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे। इस शरीर को कोई स्पर्श न कर सके, अनटच्ड प्यूरिटी, और ना ही हमारी वजह से किसी और की पवित्रता भंग हो। एक होता है खुद पतित बनना, एक है किसी को लेकर डुबोना, वो ज्यादा बड़ा पाप है। सारे कुमार सारी कुमारियां, ये माता है भाई। मुरली में बाबा ने कहा है, सुना कान खोल के सुनो। देखा होगा ना ये पोस्टर कई सेंटरों पर लगा हुआ है, प्यूरिटी धर्मराज का रूप है बाबा का। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, क्या पवित्र बनो, मेरी इतनी सी तो बात सुनो, एक जन्म इसको छोड़ नहीं सकते काम को। जन्म जन्म वो काला किया है, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा के आचरण पर चलना, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य या ब्रह्माचर्य जो ब्रह्मा ने किया। पवित्रता के लिए प्रेम, प्यूरिटी। हमारे घर का वायुमंडल, लौकिक घर का वायुमंडल आश्रम की तरह हो, कोई प्रवेश करे तो उसे आश्रम की फीलिंग आए। अगर जिस घर में टीवी चालू है और टीवी के प्रोग्राम चलते रहते हैं, वहां कैसे आश्रम की फीलिंग आएगी। अगर चालू भी हो तो उसमें मेडिटेशन होता रहे, क्लासेस होती रहे, घर में ऐसे चित्र रखे हो कि जो देखते ही प्यूरिटी का अनुभव हो, घर वैसा हो जाए जैसे सेवा केंद्र। और हमने ऐसे कई सारे घर देखे, कई सारे भाई बहनों के जो लेके जाते हैं, कहीं भट्टी पर गए तो कहते हमारे घर चलो, जाकर देखते हैं तो क्या घर है या सेंटर। इतनी सादगी, इतनी प्यूरिटी। माता जी वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे बहनें पहनती, जैसे सेवा केंद्र, प्यूरिटी। जगदीश भाई की एक किताब है ब्रह्मचर्य, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़े, यज्ञ में है, सॉफ्ट कॉपी भी है, जिनको चाहिए वो ले सकते, जो मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो किताब तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तीसरा नियम, थर्ड पेज, ये पेज को छोड़ दो और इसमें ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए क्या क्या किया जाए इसका चिंतन बाद में लिखना। तीसरा सी, सेंटर एटमॉस्फियर, अर्थात सेंटर का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना, ये नियम है, ये मर्यादा है, उनकी भी जो रहते हैं और उनके भी जो आते हैं वहां पर, दोनों का काम कि सेवा केंद्र का वायुमंडल हमें शक्तिशाली बनाना है। सेवा केंद्र पर जाकर पैसों की चर्चा, बिजनेस की चर्चा, संसार की बातें, संसार की न्यूज, पॉलिटिक्स की चर्चा, घर गृहस्थी की चर्चा, इधर उधर की बातें, गॉसिप्स, इसकी सास, उसकी बहू, उसकी ननद क्या क्या करते हैं, वो अपने घर में जाके करना, या नहीं सेंटर आश्रम है, वायुमंडल शक्तिशाली, इधर उधर की चर्चा, दृष्टि भाइयों के लिए विशेष, जो वहां रहते हैं वो कौन है, ये वही बहनें हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, ये चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, जो आप पैसा, पर जिन्होंने अपने योगन को यज्ञ की वेदिका पर समर्पित कर दिया वो साधारण आत्माएं नहीं हो सकती। जिन्हें स्वयं भगवान ने चुना है वो ये साधारण नहीं हो सकती, जिसके लिए उनके प्रति दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्रता की रहे, सम्मान की रहे। ये ना सोचना हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कम पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी कम होगी, पर भगवान ने चुना है क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारिणी है। जहां वो रहती है वहां रहने मात्र के मार्ग से कोई साधारण आत्मा नहीं रह सकती, वहां पर ओखली है। किसी मंदिर में कोई जाए, कोई युवक, कोई कुमार, कोई भाई, और उस देवी के प्रति उसकी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाए, और वहां के लोगों को पता चल जाए, वहां के पुजारी को और भक्तों को पता चल जाए, तो क्या करेंगे उसके साथ? इसके लिए उन्हें कम नहीं समझना, छोटा नहीं समझना, कम बुद्धिमान नहीं समझना। अनुभव भले कम होगा, शिक्षा कम होगी, चाहे स्कूल भी नहीं गई होगी, पर उनके पास स्वयं भगवान ने अथॉरिटी दी थी। अर्पिता है, समर्पिता है, निवेदिता है। न ही उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोई साजिश, न गुटबाजी, न परचिंतन, न परदर्शन। ये ऐसा क्यों करती है, ये वैसा क्यों करती है। उनकी महानता को हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था भविष्यवाणी, उनकी मृत्यु 1902 में हो गई, यज्ञ की स्थापना 1936-37 में हुई, 36-37। उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब भारतीय नारी, अ डे विल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी। वो कौन है? यही है। इसलिए सेवा का वायुमंडल में कोई साजिश ना हो, कोई व्यर्थ ना हो, कोई निगेटिव ना हो, कोई कुदृष्टि ना हो, कोई संसार का परचिंतन ना हो। शक्तिशाली वायुमंडल, ज्ञान योग का वायुमंडल हो, तपस्या का वायुमंडल हो, आज्ञाकारिता का वायुमंडल हो, बहानेबाजी का नहीं, स्वार्थ का नहीं। इनका क्या स्वार्थ है? इनका जीवन ही दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ है ही नहीं। सूरज रे जलते रहना, ये इनका जीवन है। तो जल जल और किरणें लुटा, सूरज रे जलते रहना। किसी महान लक्ष्य के हित तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, ज्वाला के भवन में है वो। तू जल जल और किरणें लुटा, यही है तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। इस कार्य के लिए चुने गए हैं, उनका अपना तो कुछ है ही नहीं। वासनाओं की चक्की में पिसे हुए इनका बेदाग जीवन क्या समझ पाएंगे? चौथा ड्रेस, फोर्थ पॉइंट, चौथी मर्यादा, डी फॉर ड्रेस। कैसा होना चाहिए हमारा ड्रेस, ये मत कहना व्हाइट होना चाहिए, दूसरा कुछ बोलो। कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इस्लाम धर्म में बहनों के ड्रेस के लिए 5 बातें कही गई है, बहनों के लिए इस्लाम धर्म में। ज्ञान की रीति से आपको काम में आएगी। पहला जिसमें ये हाथ, ये चेहरा और पैर बस इतना ही खुला रहे, कुछ कुछ में तो उतना भी नहीं, बुरखा का पहला नियम। दूसरा नियम, कपड़े पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट, आर पार, कपड़े पारदर्शी ना हो। तीसरा, बहनों के लिए टाइट ना हो, ढीले हो। जो भी धर्म स्थापक है उनके ड्रेस कैसे है, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ढीले। चौथा, पुरुषों के जैसे ना हो, ये बहनों के लिए नियम है। बहनों का ड्रेस नॉट लाइक मेल्स। और आज तो दुनिया में पता ही नहीं चलता है कौन है। फिल्म देखने के लिए कुछ लोग बैठे होते हैं, एक भाई बैठा होता है, फिल्म चालू है, वो बाजू की बाजू में एक भाई बैठा है, उसको कहता है कि वो जो दिख रही है ना, वो जो एक्टर दिख रहा है ना, आपके जैसा दिखता है। वो कहता है कि वो एक्टर नहीं, वो मेरी बेटी है। ये भाई कहता है कि वो जो दिख रही है सिनेमा में, वो बिल्कुल आपके जैसे जैसा दिखता है वो एक्टर। वो कहता है वो एक्टर नहीं, वो मेरी बेटी एक्ट्रेस है। तो ये उसको कहता है अच्छा, तो आप उसके पिता हो। वो कहते पिता नहीं, मैं उसकी माँ हूं। पांचवा, भड़की लेना हो, भड़काओ, तड़क भड़क। इस्लाम धर्म में ये 5 नियम है बहनों के लिए, इसलिए उनकी कितनी मर्यादाएं होती है। बुरखा पहनती, बाबा ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं। सबसे पहले ये सब बातें तो है ही है, स्वच्छ हो, फटे हुए ना हो, टाइट ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, दिखावे वाले ना हो, महंगे ना हो बहुत। इतने महंगे पहन के आए, जो भी देखता है उसको सोचता है मुझे कब मिलेंगे ऐसे, देखने वाले दुखी हो जाते हैं। और जितने हो सके कलर भी यदि है तो वो सिंपल कलर, लाइट कलर। और हमें तो बाबा ने सफेद तो दे ही दिया है, कफन का रंग है ये, कफन पहन के घूम रहे हैं, मर चुके हैं। और जो कपड़े मिले वो ये समझना यज्ञ से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने दिए तो उसकी याद आती रहेगी। और हम भी अगर किसी को, अगर माताओं को किसी को कपड़े देने हैं तो बहन जी को दे दो, बहन जी के द्वारा दिए जाएंगे किसी कन्या को। हमारे घर में बहुत सारी साड़ियां रखी हुई है, क्या करें, या कई लोगों के पास बहुत सारे जूते रखे हुए हैं, हम ना दे, बहन के थ्रू दे, तो वो देने वाले को लगेगा ये यज्ञ से मिला है। अगर हमने दिया, किसी को गिफ्ट दिया, अब दूसरे दिन इंतजार में है वो पहन के आएगा, पहन के आएगा, पहन के आता ही नहीं। 10 दिन हो गए हमने गिफ्ट दिए हुए, जैकेट दिया उसको, एक बार भी नहीं पहना, फिर पूछेंगे क्या हुआ जैकेट, तुमने दे दिया ना, बस भूल जाओ, वो क्या करेगा उसका काम है, पहना नहीं पहना या किसी को दे दिया। कोई कोई पीछे ही पड़ जाते हैं, कुछ चीज देते हैं और फिर चेक करते रहते हैं यूज किए कि नहीं की, यूज किए कि नहीं की। हमारे ड्रेस में सादगी हो, प्यूरिटी हो, स्वच्छता हो, कोई देखे, बहनों को तो मां नजर आए, भाई को देखे तो योगी जैसे दिखाई दे। संसार की जो फैशन है वो हमारे लिए नहीं है, और वो करके भी क्या मिलता है, उनके वास्तविक चेहरे कुछ और होते हैं। वो तो इतना मेकअप कर करके एक एक घंटा बैठ के फिर दिखता है जो दिखता है, वास्तव में जो वैसे थे वैसे देखेंगे तो लगेगा ये ऐसा है। तो ड्रेस मर्यादा पूर्वक और अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग परिस्थिति देखकर। वैसे तो एक ही होना चाहिए जो ब्रह्मा कुमार कुमारी का, परंतु जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको बहुत सारी, जैसे कोई ऑफिस में काम करता है तो उसको ऑफिस का ड्रेस पहनना ही है, वो बैच वो टाई वो जो भी है वो उसको वहां पे वो पहनना है। और ड्रेस के साथ और एक चीज जुड़ी हुई है, बैच। ये बैच क्या है तुम्हारा? सेफ्टी का साधन। ये बैच क्या है? शस्त्र है। कोई लोग बैच पहनते हैं भाई, छोटा सा बैच बटन वाला, यहाँ वो दिखाई भी नहीं देता। तो सिर्फ अगर कोई कहे बैच का है ये क्या है, और नहीं तो कहीं पर भी घूमो, होटल में भी घूमो, कहीं पर कोई कौन देखता है। दोनों काम होते हैं, नहीं भी है और है भी। तो बैच लगा हुआ हुआ किस किस को डर लगता है बैच लगाने में, जरा हाथ खड़ा करेंगे। सेंटर पर नहीं, बाहर एक भी नहीं, हो ही नहीं सकता। डर रहता है थोड़ा सा, लोग क्या कहेंगे। अच्छा तुम ओम शांति में चले गए? गए तुम जो उसमें जाता है वापस नहीं आता। वो तो दूसरी बात है, डिससर्विस हो गई ना फिर तो। एक तो ब्राह्मण ही नहीं है वो, नर्स अपना ड्रेस पहन के घूमती है, उसको कोई कुछ बोलता है? कोई नहीं। सरदार जी जो होते हैं अपना पहनते, उसको शर्म आती है? अरे ये कैसे पहन, उसको शर्म आती है क्या? मिलिट्री वालों को शर्म आती है कि ये ड्रेस पहन के, हमारा भी ये ड्रेस है, शर्म कैसी? जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। ऑफिस में जाओ कोई ना कोई तो बोलेंगे, ये लो आ गए आत्मा परमात्मा वाले, ऐसा ही कहते हैं ना लोग, ये आ गए योगी जी, हंसी उड़ाते हैं ना, ये आ गए ओम शांति, ये आ गए ओम शांति वाले अशांति फैलाने, ऐसा भी कहते हैं, सब कहते हैं। पर जब ये बैच पहना जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये बैच पहन के कोई फिल्म की लाइन में खड़ा है सिनेमा टॉकीज के पास, तो ये बैच पहन के कोई पान की टकरी टपरी पे पान खा रहा है तो क्या कहेंगे उसको? वो तो डिससर्विस है, ये तो फिर लगाओ ही नहीं। हाफ कास्ट हटा दो बैच और जो करना है करो, वो डिससर्विस है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बैच लगाते ही। हम जब बैच लगाते हैं हम एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल संस्था, साधारण नहीं। हमसे गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे? ये पूरी संस्था ही ऐसी है जैसे कोई स्कूल है जिसमें 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, उसमें का एक स्टूडेंट कोई गलती करता है तो क्या करते हैं? वो स्कूल ही खराब है, उसके सारे ऐसे होंगे, एक ऐसा है ना, तो सब ऐसे, ऐसे ही कहते हैं लोग ना। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्रेस एंड बैच दोनों चीजें। उसके बाद में ई, नेक्स्ट पेज, ई अर्थात इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थात पैसे व्यर्थ बर्बाद नहीं करने हैं, जितना पैसा बर्बाद कर देते व्यर्थ में, विवेक से काम नहीं लेते। इकोनॉमी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। मधुबन में जाते हैं, फैन चालू, क्लास में बैठे हुए जिस कमरे में उसका फैन चालू है, बाथरूम का लाइट चालू है, सब गीजर चालू है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वाटर, कौन देखता है तो आठ आठ बकेट से नहा रहा है। पानी वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, भोजन वेस्ट। मधुबन में आते हैं, थालियां भर भर के लेते हैं और फेंक देते हैं, आधा ईट आते हैं, थोड़ा सा खाते और फेंक देते। आए किस लिए थे और कर क्या रहे? जब पता है भूख नहीं है, जब पता है पहले कभी खाई नहीं ये चीज, इतनू सा लो बस। अगर वो जबरदस्ती डालते तो इधर ही कर लो पूरी थाली, कैसे देंगे? पीछे से आके देंगे? वेस्ट ना हो भोजन हमारी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, पानी वेस्ट ना हो, पेट्रोल डीजल, जहां पैदल जा सकते हैं वहां पैदल जाना है, हर चीज में गाड़ी की जरूरत नहीं है। हमारे पास युगल डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको कोई पूछता है मैडम को कि भाई आप लोग कार क्यों नहीं खरीद लेते? वो कहती है अगर कार खरीद लूं तो ये हमारे डॉक्टर साहब बाथरूम में भी कार लेके जाएंगे। पैदल चलना ही बंद हो जाएगा। रोज वो लोग सुबह दो राउंड नक्की के, शाम को दो राउंड नक्की के पैदल चलते, स्वस्थ रहते, फिट रहते, जहां जा सके वहां पैदल जाना। हर चीज में गाड़ी, हर चीज में गाड़ी, हर चीज में लिफ्ट चाहिए, ऊपर से नीचे लिफ्ट, ऊपर से नीचे लिफ्ट। जाओ पैदल, घुटने ठीक हो जाएंगे। इकोनॉमी, इकोनॉमी करनी है हर चीज में, इकोनॉमी, और सूक्ष्मते सूक्ष्म इकोनॉमी है संकल्पों की इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी। बहुत बोलते रहना, बोलते रहना, टॉकेटिव टॉकेटिव, दिन रात वाचाल, पंडित होते ना वाचाल, दिन रात बोलते ही रहते। बाबा के महावाक्य है, डायरी में नोट करना है, जब तुम बोलो दूसरों को बाबा की याद आ जाए, जब तुम बोलो दूसरों को बाप की याद आ जाए, ऐसा बोलो। बजट बनाना है, ईश्वरीय बजट, बजट बनाना है, पैसों का भी बजट बनाना है, कहां पैसे वेस्ट जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें पैसे अगर एकांत में बैठ जाए, चिंतन करे तो पता चल जाएगा यहां पैसे वेस्ट हो रहे हैं। रोक दोस्त जिससे मिल कुछ नहीं रहा है। उसके बाद में अगला है एफ, इसमें होमवर्क में लिखना है और कौन कौन सी चीजों में इकोनॉमी करनी है, आगे वो बाद में लिखना आप लोग। उसके बाद है एफ अर्थात फूड, अर्थात भोजन, भोजन की मर्यादा है। भारत में चौका कहा जाता है रसोई, चौका पता है ना, चार चीजें होनी चाहिए, चौका अर्थात चार। पहला, किन पैसों से भोजन आ रहा है, दो नंबर की कमाई है, शोषण करके पैसा आ रहा है, भाग रहे हैं खाली पैसे के लिए, लालच है, लालच पैसों का। ऐसा पैसा से भोजन अगर बन रहा है तो कभी शक्तिशाली नहीं होगा। दूसरा, जाति दोष, कंकड़ पत्थर उस भोजन में ना हो। और उसके साथ जुड़ा हुआ किस प्रकार का वो भोजन है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, बहुत तीखा, बहुत गरिष्ठ, बहुत मिर्च मसाले वाला, ऐसा भोजन भगवान स्वीकार नहीं करता है। भगवान को वैसे तो प्रेम चाहिए बस। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति, पत्र पुष्प फल तोयम पानी, मुझे कोई इतना भी दे दे तो मैं खुश हो जाता। दूसरा, तीसरा, भोजन बनाने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है? क्रोध में बना रहा है, आवेश में बना रहा है, जल्दी जल्दी बना रहा है, आवाज करते हुए बना रहा है? भोजन बनाते समय कम से कम आवाज हो बर्तनों का, किस मनस्थिति में बनाया जा रहा है? याद में बनाया जा रहा है कि ये सोच के बनाया जा रहा है, ये भोजन में बनाऊंगा बनाऊंगी तो दूसरे खाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे, पूछेंगे अगर हमने भोजन बनाया सबको खिलाया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो? उदास। क्यों उदास? किसने कहा ही नहीं बहुत स्वादिष्ट बना? उनको खुश करने के लिए बनाया था क्या? कि भगवान को खुश करने के लिए बनाया था। चौथा, भोजन खाने वाला किस स्थिति में खा रहा है? क्रोध में खा रहा है, डिस्प्लेजर, दुखी होकर खा रहा है, नाखुश होकर खा रहा है, शिकायत करके खा रहा है? ये चार बातें, और भोग लगाकर उसे स्वीकार करें। चौका, रसोई। भारत में जो शादियों में भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? भारत में शादियों में जो भोजन बनाते उनको क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहा जाता है? महाराज। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत में भोजन के, उनका जो कमरा है उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, और उनके कपड़े में सिलाई नहीं होती, एक ही कपड़ा होता है महाराज का। इतनी प्यूरिटी के साथ वो भोजन बनाता है, राजा अर्थात कर्मेंद्रियों का वो अपने राजा है। दूसरी बात, भोजन बनाते बनाते खाना भी चालू है, इसको खाऊं उसको खाऊं, इधर चिप्स भी चालू है, इधर वो सेंगदाना भी खा रहे हैं, इधर काजू भी खा रहे हैं और उसमें भी डाल रहे हैं, खाना भी चालू है, भोजन बनाना भी चालू है, दोनों चीजें साथ साथ। ठाकुर जी को भोग कब लगाओगे? भोजन बनाते समय मुंह बंद और जबान भी बंद, मुख और जबान दोनों, जितना हो सके मौन में भोजन बनाना है। टीवी चालू है और भोजन बनाना चालू है, पाक शास्त्र, पाक गृह, पाक अर्थात पवित्र शुद्ध, पाक गृह कहा जाता है, पवित्र। तो भोजन की मर्यादा है, और अपने हाथों से ही बनाए सबसे बेस्ट है, अपने घर में ही खाए वो बेस्ट है, बाहर का तो सबने छोड़ रखा है, फिर भी इसमें भी गड़बड़ करते। एक परिवार अभी भी ज्ञान में आया, नया नया ज्ञान में, और उनको शादी में बुलाया गया, शादी रेस्टोरेंट में थी, बड़ी शादी, तो प्लेट आई उसमें समोसा आया। तो जो भाई थे अभी अभी जो ज्ञान में आए थे, जस्ट अभी अभी पूरा परिवार, वो समोसा फोड़ा, आलू बाहर निकाला। तो उन्हें क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम बाहर का नहीं खाते, खाली आलू खाएंगे अंदर का, हम लोग बाहर का नहीं खाते, हमको ये सिखाया गया है बाहर का नहीं खाना है, किसका खाना है? अंदर का, आलू आलू खाएंगे बस, ये अंदर बाहर का नहीं खाएंगे। सुविधाजनक श्रीमत। बाबा ने कहा आर्मी वाले खा सकते हैं डबल रोटी पाव रोटी, बोला है ना ऐसा आर्मी वाले? अभी आर्मी से रिटायर होके 10 साल हो गए, अभी भी खाना चालू है, बाबा ने कहा ना श्रीमत, ऐसी श्रीमत नहीं है। अगर कुछ अच्छा ही दिख रहा है बाहर तो घर आके बनाओ उसको। एक डबल विदेशी ने अनुभव सुनाया, विदेशी लोग आते हैं ना मधुबन में, मार्केट घूमने गए, देखा जिलेबी बन रही है, उसको लगा वाह ये क्या चीज है, बहुत मीठी होगी, तो उसको जिलेबी खाने की इच्छा हो गई। तो बेचारा सोच रहा पर अब कैसे होगा, ये तो बाहर बन रही, हम तो बाहर का तो खा नहीं सकते। मधुबन में वापस आया, नक्की का चक्कर लगाकर, गुरुवार का दिन था, भोग में जिलेबी, मनोवांछित फल यज्ञ से ही मिलेगा, जो चाहिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगला है जी, और भोजन में क्या क्या बातें हैं, कल की क्लास में सुनाई थी या परसों की, वो उसमें ऐड कर देना या खुद चिंतन करना। उसके बाद है जी अर्थात गिव, देना। क्या देना? शुभ भावनाएं, खुशी और दुआएं। ये तीन चीजें एक दूसरों को देना है। सहयोग मदद वो भी आएगा, पर शुभ भावनाएं, खुशी और दुआएं, एक दूसरों को खुशी देनी। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। शुभ भावनाएं, चाहे किसने कैसा भी किया है पर शुभ भावनाएं उसके प्रति, और दुआएं देनी है उसको। सबके लिए हमारे मन से दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, उसका भी, जो दे उसका हो भला, जो ना दे उसका भी भला, सबका भला होते रहे। देना। उसके बाद एच, अगला पेज, और क्या क्या देना, ये होमवर्क है। हमें दूसरों को क्या क्या देना है, ये होमवर्क आगे के पेज में लिखना है। अगला है एच, एच अर्थात होली कंपनी, ब्रैकेट में लिखो सत्संग। सत्संग को इंग्लिश में कहते हैं होली कंपनी। तो किसका संग करना है? एक तो बाप का, दूसरा किसका? ब्राह्मणों का संग। किला है, कितनी महिमा गाई आज सुबह की साकार मुरली में। और किसका संग करना है? तीव्र पुरुषार्थियों का संग करना है। और किसका संग करना है? किताबों का संग करना है, श्रेष्ठ लिटरेचर। और किसका संग करना है? ऑडियोज, वीडियोज, ऑडियो वीडियो विजुअल सत्संग। अच्छी अच्छी क्लासेस हमारे मोबाइल पर हो, अच्छी अच्छी वीडियोज बाबा की हमारे मोबाइल में हो। जब भी ट्रैवल करना हो क्लास, एक भाई हमको मिले थे जो ड्राइविंग करते हैं सेवा केंद्र पर, उसने कहा मैंने इतनी क्लासेस सुनी है, इतनी क्लासेस सुनी है, और कब सुनी? ड्राइविंग करते समय। टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, कहीं पर भी जाना है ईयरफोन लगाओ और जाओ, बस में, फ्लाइट में, ट्रेन में, एक क्लास सुनो, फिर रुको, फिर पॉइंट्स निकालो, नोट करो। ये सबसे अच्छा सत्संग, ऑडियो विजुअल सत्संग, प्रकृति का सत्संग, नेचर, प्राकृतिक सौंदर्य। चले जाओ नदी के किनारे, पहाड़ पर, कहीं पर भी, थोड़ा देर रुको, एक घंटा, और वापस आ जाओ, वो सत्संग है। तो होली कंपनी। उसके बाद है आय, और कौन कौन सी चीजों का सत्संग करना है वो इसमें लिखना है आगे। आय अर्थात इम्बाइब, इंग्लिश में इम्बाइब का अर्थ होता है धारण करना। किसको धारण करना? दिव्य गुणों की धारणा करना, ये मर्यादा नियम है। जैसे ज्ञान की भट्टी है, योग की भट्टी है, सेवा की भट्टी है, वैसे दिव्य गुणों की भट्टी करनी है। कैसे? एक हफ्ते के लिए एक दिव्य गुण उठा लेना। एग्जाम्पल, डिसिप्लिन। मेरे जीवन में अनुशासन कितना है, मुझे इस पर काम करना है, एक हफ्ता उसी पर काम करूंगा। तो इसको कहते हैं इम्बाइबिंग डिवाइन वर्च्यूज। 36 दिव्य गुणों की लिस्ट हमारे पास है, आप सबको एक काम दे रहे, उन 36 को छोड़कर और कौन कौन से दिव्य गुण है वो लिखने हैं। 36 को दिव्य गुण तो है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हम एक जगह गए थे, वहां की कन्याएं थी, उन्होंने 200 के ऊपर दिव्य गुण लिख के दिए हमको, वो 36 छोड़कर। उसके अलावा चिंतन, चिंतन से सब निकलता है, चिंतन करते रहो निकलेगा मक्खन। आए उसके बाद में जे, अगला जे अर्थात जर्नी टू मधुबन। जब मधुबन जाते हैं तो कौन कौन से नियम है? पहला तो वहां जाना है तो प्लानिंग के साथ जाना है, ऐसा नहीं गए और बस इससे मिला उससे मिला, बाहर बाजार लगा है, मीना बाजार, माया बाजार, खरीदी करके आ गए। एक बैग लेके गए थे आते समय, कितनी? 4। सारे परिवार वालों के लिए कुछ कुछ लेके आया, उसी में सारा समय गया। मधुबन जाना अर्थात प्लानिंग करके जाना है, मधुबन जाना अर्थात। दूसरा, अमृत वेले की प्लानिंग हो, मुरली की प्लानिंग हो, बाबा मिलन की प्लानिंग हो। ऐसे ही चले गए बाबा मिलन में, बैठ गए और हमको अनुभव ही नहीं हुआ, कैसे होगा? अनुभव इतना सस्ता नहीं है, वैराग्य चाहिए अनुभव के लिए। प्रभु प्रेम की अमृत धारा अंदर बहती रहे अनुभव के लिए, ज्ञान का चिंतन होता रहे तब अनुभव होता है, मौन हो तब अनुभव होता है। मधुबन जा रहे हैं, वहां क्या क्या न करना है उसकी लिस्ट बना के जाना है। यहां से मुझे व्यर्थ की बातों में जाना नहीं, सारा समय भोजन भोजन भोजन, अब क्या बना तब क्या बना, इधर क्या बना उधर क्या बना, इधर पिकनिक उधर पिकनिक, ये खरीदना वो खरीदना, ये सब में नहीं जाना है। अपना टाइम टेबल बनाना है, कितना समय बाबा के कमरे में बैठना है, कितना समय योग करना है, मुरली चिंतन, सुबह मुरली चलती है डायमंड हॉल में, मुरली सुनने के बाद चिंतन करना है, फिर भोजन, फिर क्लासेस, थोड़ी प्लानिंग, ऐसे नहीं चले जाना, और परमिशन लेकर जाना है, सेंटर का लेटर हो। ऐसे ही हम तो, हमें किसी की लेटर की जरूरत नहीं, हमारी बहुत पहचान है, ऐसे भी बहुत डायरेक्ट पहुंचते, डायरेक्ट आते हैं, अनुभव ही जीरो, कुछ नहीं। जी जर्नी टू मधुबन, मधुबन की यात्रा के नियम मर्यादा है। और यहां से जब जाओ तो ट्रेन में जाते हैं, विधि पूर्वक जाए, ट्रेन की भी मर्यादा। हम अगर वहां झगड़ा करने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, हम जोर जोर से बोलने लगे तो लोग क्या सोचेंगे। जैसे एक युगल थे, दोनों ज्ञान में चलते थे, रोज रात को लड़ते थे, लड़ाई भी ऐसी खतरनाक कि एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ते थे, बाहर वाले छुड़ाने आते थे, अरे आप लोग तो ओम शांति वाले हो, ऐसा बोल के जाते थे, कितनी बड़ी डिससर्विस। और दोनों ज्ञान पक्के, और लड़ाई में भी पक्के, ट्रेन में मर्यादा है। और ट्रेन में और एक चीज जो एकदम नशा चढ़ जाता है सबको, पकड़ा और सीधा ज्ञान सुनाना चालू करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, बड़ा बेरहमी से रहम करते हैं। ऐसा नशा चढ़ जाता है किस किस को, वो कहता है मैं अभी अभी तुम्हारा सब ढूंढ देख के आया हूं, वो देखा होगा, मैं सुनाता हूं, सुनो तुम कौन हो, आत्मा, शरीर नहीं। एक घंटे का टाइम है, एक घंटे में चालू करते आत्मा से, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और सीधा ब्रह्मचर्य पर खत्म करते हैं। खबरदार ब्रह्मचर्य तोड़ा, बेचारा पहले ही दुखी, संसार के टेंशन से और दुखी हो जाता है। एक घंटे में पूरा पंप लगा देते ज्ञान का, यहां पर पेट्रोल पंप होता है ना, ऐसे डालते पूरा भर देते, सामने वाला बेचारा टूट कर गिर जाता है। थोड़ा ध्यान से सेवा करनी है, ध्यान से, किसको इंटरेस्ट है। एक भाई ट्रेन में जा रहा था, उसको दूसरे भाई ने बोला तुम ज्ञान नहीं सुना था, वो कहता है पत्थरों पर मेरे पास रत्न नहीं है फेंकने के लिए, मैं क्यों सुनाऊं, ये पत्थर है, इनके थोड़ी ना सुनाऊंगा, उपजाऊ भूमि चाहिए। क्या नाम है उस भूमि का, उपजाऊ यहां वाली सबसे उपजाऊ भूमि है ना एशिया की, कल मेटा, तो उपजाऊ भूमि चाहिए। तो मधुबन में जाने के लिए ये भी एक चीज है, ध्यान से सुनाना है, कोई इंटरेस्ट दिखाए तो सुनाओ, परख के नब्ज देखकर, जबरदस्ती नहीं सुनाना है किसी को, उससे डिस्टर्बेंस हो जाती है। एक बहुत बड़ी बहन ने अनुभव सुनाया था, उसने कहा था जब मैं बहुत युवा थी, नई नई ज्ञान में आई थी और ट्रेन में बहुत सेवा कर रही थी, एक बहुत सीनियर बहन स्त्री बाहर के संस्था की चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ नहीं कह रही थी, अध्यात्मिक किसी संस्था से जुड़ी होगी, और वो इसको भी, ये छोटी बहन उसको भी सुनाने लगी। तो उसने कहा रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो, तो ये बहन ने कहा सेवा, उस बहन ने कहा ये तुम्हारी सेवा नहीं, तुम लोग प्रचार कर रहे हो, छुपी हो गई, कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा सलीके से ध्यान से समझ के शिष्टाचार के साथ सेवा करनी। बस टूट नहीं पड़ना है किसी पर, कोई मिल गया अकेला थोड़ा सा भगत टाइप कि टूट पड़े उसके ऊपर। जी, तो मधुबन में और किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी लिस्ट आप बनाएंगे जी। उसके बाद में के अर्थात कीप चार्ट, अपना चार्ट रखना है रात को सोने से पहले। जो लिख सके बहुत अच्छा, जो नहीं लिखते वो कम से कम बाबा को तो सुना दे कि आज बाबा इतना याद किया, ऐसा किया, ये गलती हो गई। जो लिखे है तो बहुत अच्छा, और हर दिन नया चार्ट हो तो बहुत ही अच्छा। और हर दिन का चार्ट रोज की मुरली से, मुरली सुनते सुनते ही बता देना 5 प्रश्न। ये भी एक विधि है। उसके बाद में एल, एल अर्थात अगला चार्ट में क्या क्या लिखना है ये होमवर्क। एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, और बाकी सबसे क्या, बाकी सबसे नफरत, बाकी सबसे ऊपर ऊपर का प्यार। ऐसे हाथ घुमा देना थोड़ा सा, अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है। और अंदर का प्यार एक से। वो रामकृष्ण परमहंस कहते थे एक स्त्री है जिसकी शादी होगी पर उसको प्यार उससे किसी और से रहती है इसके साथ, पर याद उसको करती है। वो कहते तुमको भी संसार में रहना है पर प्यार उसको करते रहना है। इधर से ऊपर ऊपर से झूठा झूठा प्यार, सच्चा प्यार एक बाप से, लव फॉर वन फादर एल। उसके बाद में एम, एम अर्थात मुरली चिंतन। इसमें प्रश्न लिखना है बाप से प्यार बढ़ाने के क्या क्या फायदे और क्या क्या तरीके। एम से मुरली चिंतन। मुरली क्लास केवल सुनने के लिए नहीं है, चिंतन करने के लिए। रोज की मुरली से 5 टॉपिक्स निकालना है और दिन भर उनका चिंतन करते रहना है। जैसे आज की मुरली से ब्राह्मण परिवार की विशेषता क्या क्या है, आज की मुरली से ब्राह्मण परिवार का स्वर्ग कौन सा है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, नेता मन के नेता बनो कैसे, प्रश्न निकालने हैं मुरली से। सेवाधारी कैसे, रूहानी पदयात्री कैसे, प्रश्न निकालना। मुरली में अपनी डायरी में प्रश्न नोट करके छोड़ देने, फिर दिन भर में जब टाइम मिला, कभी मिलेगा भी नहीं, रात को देखना है, और मिला तो बहुत अच्छा, चिंतन करना है। एम, उसके बाद में एन, मुरली चिंतन कैसे करें, मुरली चिंतन से क्या फायदे हैं, मुरली चिंतन की विधि क्या है, कहाँ करें, कब करें, इस पर दूसरी क्लासेस हमने कराई है, पर इसमें आप अपना चिंतन लिख सकते हैं। उसके बाद है एन, एन अर्थात नो, एन अर्थात नो। लिस्ट बनानी है किन किन चीजों के लिए बाबा ने मना किया है, जो मैं कर रहा हूं और वो बाबा ने मना किया है, बाबा ने मना किया है, क्रॉस कर देना उसको। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है ना, उसमें क्रॉस होता है ना ऐसा, हड्डिया दो, नीचे क्या लिखा होता है, डेंजर, 1000 वोल्ट का करंट, जो चीजें करनी नहीं है। मन को कहो क्रॉस, युवक नौजवान वेबसाइट्स क्रॉस नो, अननेसेसरी इंटरनेट नो, अननेसेसरी सर्फिंग नो, अननेसेसरी शॉपिंग नो, गॉसिप्स नो, झरमोई झरमोई परचिंतन नो, टाइम वेस्ट नो, साइट सीइंग इधर जाऊं उधर जाऊं इसको देखो उसको देखो नो। लिस्ट बनानी है। नो का क्या 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 है मेरे जीवन में, जो मुझे नो करना है, स्टॉप कर देना है। उसके बाद है ओ, अगला ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत। ये मर्यादा है कि मैं श्रीमत का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और कितनी श्रीमत है, एकदम मुख्य श्रीमत क्या है संस्था की, उस पर चिंतन करते रहना। जैसे आज की मुरली में क्या श्रीमत है जो मैं नहीं करता हूं, उसकी लिस्ट निकालना है, ओ फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, उसके बाद है पी, पी का जो पॉइंट है भाइयों के लिए ज्यादा है, प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, जो भी यज्ञ का लिटरेचर पब्लिश करेंगे बहन की परमिशन के साथ करना है, जैसे आज शाम को प्रोग्राम है या और कहीं पब्लिक प्रोग्राम है, खुद ही डिसाइड करना यहाँ रखना है, खुद ही पब्लिश करना, खुद ही पॉम्पलेट बनाना, खुद ही बांटना और बहनों को पता ही नहीं। एक बार किसी कुमार ने सेंटर पर इतने सारे वीआईपीज बुला लिए और सेंटर की बहनों को पता ही नहीं और इतने सारे भीड़ आ गया, उसको लगा उनको पता है, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई पूरी, किसी को पता नहीं और इतने सारे लोग आ गए। प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर, किताब पब्लिश करनी है, कविताएं लिखते हैं, कई लोग अपनी कविता लिखते हैं, अपनी किताब बनाते हैं, नीचे ब्रह्मा कुमार इसका नाम डाल देते, कोई किताब लिखता है, प्रिंटिंग करता है, गीत लिखता है, कुछ भी इन कनेक्शन वो बहनों से पूछ के होना चाहिए, अपने आप ही नहीं करते रहना, किताब बना देना है, कुछ भी फोल्डर पॉम्पलेट फ्लायर पोस्टर होर्डिंग बोर्ड कुछ भी। उसके बाद है क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है पर इसका अर्थ होता है कि जो भी सेवा करो वो कैसी करो, क्वालिटी वाली वाली, ऊपर ऊपर से काम चलाऊ नहीं, बहन जी ने कहा ये कर देना, कर दिया और निकल गए और आधा ही रह गया, जो भी सेवा दी गया है उसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है, मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल होता है, उसमें ये रूल्स होते हैं, ये क्वालिटी होनी चाहिए लेबोरेटरी की, तो जो भी काम करे उसमें गुणवत्ता हो, दिल से हो, मन से की गई हो। उसके बाद है आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, हमारे संबंध कैसे हो, ब्राह्मण परिवार में प्रेममय हो, घृणा ईर्ष्या के ना हो, डिटैचमेंट हो थोड़ी सी उसमें तो बहुत अच्छा। उसके बाद है एस, एस अर्थात साइलेंस और सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, व्यस्त दिनचर्या में मौन के क्षण निकालना है जिसमें हम बाबा को याद कर सके, चिंतन कर सके। टी, टी अर्थात ट्रस्टी, हजारों लाखों हाथों में आए और चले जाए पर ये भाव रहे ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, जैसे बैंक का क्लर्क होता है मैनेजर या बैंक में काम करने वाले, दिन भर पैसे गिनते हैं पर उनको पता है ये पैसे मेरे नहीं है, महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलेगी, ये हजारों आए कोई खुशी नहीं, लोग आते हैं 1 लाख रुपए कोई डिपॉजिट करके गया उसको खुशी होती है क्या, नहीं उसको पता है मेरे है ही नहीं, अच्छा थोड़ी देर के बाद दूसरा आ जाएगा 10 लाख रुपए निकाल के ले जाएगा, दुख होता है नहीं, ट्रस्टी है वो, वैसे ट्रस्टी, ये सब बाबा का है, ये घर बाबा का, ये कार बाबा की, ये हर चीज बाबा का, ये किचन बाबा का, कोई कोई होते हैं उनके मुख में इतना वो समा गया है विदेश में, ये बाबा का घर है, ये बाबा का कंप्यूटर, ये बाबा की कार, ऐसे बात करते हैं, सैलरी मिलती है बाबा के ट्रांसलेट के सामने रखते हैं और फिर लेते हैं चेक कैश जो भी या सैलरी स्लिप, मेरा नहीं। यू, यू अर्थात यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, ये ज्ञान केवल शोकेस में रखने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, आज जो सुना सुबह बाबा ने कहा सहन करना है और शाम को ही परिस्थिति आ गई, किसी ने इतना कुछ बोल दिया हमें वहां सहन करना है, चुप चुप। वी, वी अर्थात विजिट टू अनदर सेंटर, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र जा रहे हैं तो लेटर लेकर जाना है बहन से, क्या करना है लेटर लेकर जाना है, ऐसा नहीं हम तो जानते हैं पहचानते हैं, इधर का लेटर चाहिए, ये रूल है यज्ञ का। डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर मोशन, ये तो करते ही है सभी, पेट साफ होने के बाद स्नान करना स्वच्छता की दृष्टि से भी और बाबा की श्रीमत के अनुसार। डब्ल्यू एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग। दिन भर में बीच बीच में जब भी समय मिले तो क्या करना है, खुद की चेकिंग करते रहना है, सेल्फ चेकिंग होती रहे, एक्सरे करते रहे, एक्सरे में देखना है कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, भावनात्मक फ्रैक्चर, इमोशनल फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई घृणा का भाव। आज सारे दिन भर में एकदम से किसी के लिए नफरत उत्पन्न हुई, क्यों? देखना है एक्सरे, कहां हुई, क्यों हुई, जरूर कोई पुरानी दुश्मनी होगी, उसको हटा दिया। वाय, वाय अर्थात योग, निद्रा, और जेड अर्थात झील, झील अर्थात एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह, हर काम उमंग उत्साह से करना है। आखिरी पॉइंट बचा है वाय अर्थात योग निद्रा। कितने किसने किसने योग निद्रा के बारे में सुना है? योग निद्रा के बारे में बहुत कम। योग निद्रा एक विधि है सोने की, जिसमें हम सोते हैं, ये बिस्तर है, शरीर को शिथिल छोड़ना, श्वास की तरफ ध्यान देना, धीरे धीरे शक्ति अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, पैर रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, जैसे शवासन करते हैं, और फिर शक्तिशाली संकल्प लेना, कोई स्वमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और उस स्वमान को देखना, विजुलाइज करना, अनुभव करना, और वो करते 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 सो जाए। ऐसा अगर सोएंगे रोज, आठ स्टेप्स है इसकी, ये तो इस पर एक कभी क्लास कराया था मधुबन में, एट स्टेप्स ऑफ योग निद्रा, पर ये करते 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 जब सोएंगे तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे, या आएंगे ही नहीं तो बहुत अच्छा, और सुबह अपने आप आंख खुलेगी। तो टोटल कितने हुए? 26। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर अमृत वेला, जिन्होंने आज तक बहुत मिस कर दिया है, कल से एक बार भी मिस नहीं करेंगे। बी फॉर ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। सी फॉर सेंटर एटमॉस्फेयर, सेंटर का वायुमंडल, मुझे शक्तिशाली बनाना है, कोई दूसरा बनाए या ना बनाए, मैं निमित्त ना बनू दूषित करने का। डी फॉर ड्रेस, हमारे ड्रेस बहुत मर्यादा पूर्वक हो, अच्छे हो, योगी दिखाई दे, दिखावे वाले ना। ई इकोनॉमी करनी, हर चीज की इकोनॉमी। एफ भोजन, भोजन के बहुत सारे नियम हैं, भोजन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बातें करते करते भोजन करना ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है, जितना हो सके, जितना हो सके बाबा की याद में। जी देना, दे दो। एच सत्संग, कुसंग बहुत बड़ा विकार है संसार के, युवक क्यों बिगड़ते हैं, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, कुसंग में चले जाते हैं। आय इम्बाइब, धारण करना दिव्य गुणों को, भट्टी करनी है अपने दिव्य गुणों को। जे मधुबन में जाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। के कीप चार्ट, चार्ट अपना बनाना है। एल लव फॉर, एक बाप से प्यार। एम मुरली का चिंतन। एन नो की लिस्ट बनानी है। ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमद, श्रीमद का पालन करना। पी प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर कब भी जब भी प्रिंट करो बहन को पूछ के करना। क्यू क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी काम करो, जो भी सेवा करो, योग करो, ज्ञान करो, कुछ भी करो, घर का काम करो, चलो सफाई कर रहे हैं घर की, वो भी बहुत ध्यान से करनी, अच्छे से, जागरूकता से, होश में। आर रिलेशनशिप, अपने संबंधों को ठीक करना है, जो फ्रैक्चर रिपेयर करने हैं उनको। आर एस साइलेंस सॉलिट्यूड, साइलेंस और सॉलिट्यूड अर्थात मौन और एकांत। एस टी अर्थात ट्रस्टी का भाव हो, ये इतना बड़ा बिजनेस, ये इतने सारे पैसे, ये सब बाबा का है, अंदर से ये भाव रहे, ऊपर से संभाल कर रहे पर मुझे पता है ये मेरा नहीं है। यू यूज ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, जो ज्ञान सुना सुबह दिन भर उसका यूज करना है। डब्ल्यू यू वी विजिटिंग अदर सेंटर, लेटर लेकर जाना है। W wash after bath. X X-ray. Y yog nidra. सोने की हमारी विधि ऐसे हो कि हम योग युक्त होकर सोए, बाबा की याद में सोए। और लास्ट है जेड अर्थात झील अर्थात उमंग उत्साह। झील जेड ई ए एल, झील अर्थात उमंग उत्साह। तो हम उमंग उत्साह से भरपूर हो, तो ऐसे 26 नियम 26 मर्यादाएं हैं। ओम शांति।